भूमिका, तूर साहित्य पुस्तक पढ़कर मैं बड़ा आनंदित हुआ था, पर जब सुना कि पुस्तक की भूमिका मुझे ही लिखनी पड़ेगी तो वही आनंद उद्वेग के रूप में बदल गया। उद्वेग का कारण बताऊं, श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी मेरे छोटे भाई के समान हैं। नित्य ही उनके साथ नाना विषयों पर मेरी बातचीत और आलाप आलोचना होती रहती है, इसीलिए वे एक तरह से मेरे नितांत अपने हैं। उनके किसी मतामत की आलोचना करना मानो अपने ही बारे में अपने आप लिखना है, इसीलिए यह काम मेरे लिए जरा मुश्किल है। एक और गुरुतर कारण से भी इस ग्रंथ की भूमिका लिखने में हिचक होती है, उसे भी समझा देना जरूरी है। श्री हजारी प्रसाद जी, भक्ति तत्व, प्रेम तत्व, राधा कृष्ण मतवाद आदि के संबंध में जो कुछ भी उल्लेख योग्य है, जहाँ कहीं से पा सके हैं, उसे इस ग्रंथ में संग्रह किया है और उस पर भली भांति विचार भी किया है। विचार का फलाफल उन्होंने स्पष्ट भाषा में लिखा है। इसका फल यह हुआ है कि पुस्तक आराम के साथ निश्चिंत और अलस भाव से पढ़ने लायक नहीं हुई है। पद पद पर चिंता और विचार करने की जरूरत है। हमारे इस आराम प्रिय आलसी देश में चिंता और विचार करने के लिए बहुत कम आदमी राजी होते हैं, इसलिए हम लोग युग युगांतर से चिंता का भार शास्त्र और ऋषि मुनियों पर, विचार का भार गुरु पर और आचार का भार लोक परंपरा पर लादते आए हैं। हमारी सनातन रीति वही रही है जिसे बंगाल में कहा करते हैं, कर्ता मालिक की इच्छा ही कर्म है। इसके बाद जब पश्चिम से ज्ञान विज्ञान का यह नया युग आया, तब भी हमने अपनी सनातन रीति बदली नहीं, अर्थात जड़ता का आलस्य छोड़ा नहीं, बदला हमने अपने कर्ता को भारतीय शास्त्र गुरु और लोकचार के सिंहासन पर यूरोप के अथॉरिटी मत और सिद्धांत को बिठा दिया, अर्थात एक राजा गया दूसरा आया, किंतु शासन शोषण पीड़न और चालन की विधि वही चलती रही। बीच बीच में प्रायः देखा जाता है कि एकांत स्त्री परायण व्यक्ति स्त्री के मरते ही दूसरी स्त्री का पारिग्रहण कर ले करके उसी की ताबेदारी में लग जाता है। जो इसका मर्म नहीं समझते विस्मित होते हैं, उन्हें समझाना चाहिए कि स्त्रैण का स्वभाव ही ऐसा होता है। पत्नी का अर्थ है स्वामिनी, इसीलिए जब एक स्वामिनी चली गई तो दूसरे को उसी शून्य सिंहासन पर बैठाना पड़ता है। इसीलिए इस युग में हमने शास्त्र गुरु और लोकाचार की दुहाई देना छोड़कर उसके स्थान पर अगर यूरोपियन अथॉरिटी की दुहाई देना शुरू किया है तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। लेकिन आश्चर्य सचमुच तब होता है जब देखते हैं कि पुराने स्वामी तो है ही, नए स्वामी को भी हमने उसी के बगल में बैठा लिया है। मानते मानते माना कि हमारा मन मानना परायण हो गया है। जहाँ एक जातीय प्रभु के अधीन थे, वहाँ अगर एक और प्रभु की अधीनता को स्वीकार कर ली गई तो कोई बात नहीं, उससे कुछ हमारा आता जाता नहीं। पर दोनों जाति के प्रभुओं को एक ही सिंहासन पर एक के बगल में दूसरे को बैठने के लिए कैसे हमने राजी कर लिया, यही आश्चर्य की बात है। यह सर्ववादी सम्मत है कि दो राजा का राज्य सुखकर नहीं होता। दो स्त्री के साथ गृहस्थी चलाना भी परम दुर्गति है, यह भी सभी जानते हैं। किंतु सनातन और नूतन दो प्रभुओं की ताबेदारी हम एक ही साथ कैसे चला रहे हैं। प्राचीनतम सनातनी विधि के साथ नूतनम वैज्ञानिकी आधुनातनी रीति को हमने बेमालूम जोड़ लिया है। वृद्ध के साथ बालिका के विवाह में जैसा गोलमाल होता है, वैसा इस क्षेत्र में बिल्कुल नहीं हुआ। इसमें जो एक बैडोल द्विसदृश व्यापार है, वह किसी को दिखा ही नहीं। जो हो, बात यह है कि हमने सुदीर्घ काल तक समझने सोचने और विचार करने का भार पुराने प्रभुओं को दे रखा था और अब रिवाज हुआ है कि यह भार यूरोपियन प्रभु अथॉरिटियों को देना चाहिए। किसी किसी सज्जन के अनुपम कौशल और अचिंतनीय चातुरी के बल पर इन दोनों का समन्वय करके भावना चिंता और विचार के भार को पुरातन और नूतन दोनों तरह के प्रभुओं के सिर पर समान भाव से लाद दिया है। सीधी बात यह है कि इस तरह के लोग स्वयं चिरंतन प्रथा से बड़े आराम से अलग भाव से अपनी बंधी बंधाई बोलियों को रटते जा रहे हैं। जब चारों ओर की अवस्था ऐसी है, तब श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी की सूर्य साहित्य पुस्तक पढ़कर बड़ा विस्मय हुआ। इन्होंने तो पुराने या नए किसी कर्ता मालिक को बिना विचारे प्रभु नहीं माना, अथच कहीं भी किसी के प्रति असंगत असम्मान भी नहीं दिखाया। उनके प्रत्येक मत को इन्होंने अपने विचार बुद्धि की कसौटी पर भली भांति घिस कर परख कर सावधानी के साथ ग्रहण या वर्जन किया है। हमारे इस कर्ता भजा देश में यह क्या मालूमी जिठाई है, फिर वे स्वयं माल मसाला इकट्ठा करके भावना चिंता और विचार करने में स्वयं प्रवृत्त होने को कह रहे हैं। हमारे इस आराम प्रिय अलस देश में यह दारुण दुर्लक्षण है। अब अगर ऐसी पुस्तक के बारे में मैं एक अच्छी सी भारी भरकम भूमिका लिखूं, तो हमारे देश के जड़ता विलासी पाठकों को फिर एक बार बैठ सोचना विचारना पड़ेगा, इतनी तकलीफ उठाने को सब लोग क्यों राजी होने लगे। इसीलिए इस ग्रंथ की भूमिका लिखने के लिए अनुरुद्ध होकर भी मैंने हफ्तों तक कार्य स्थगित रखा। मेरे संकोच का हेतु क्या था यह बात अब सब लोग समझ सकेंगे, लेकिन भरोसा यह है कि एक श्रेणी में पाठक ऐसे हैं जरूर, यद्यपि उनकी संख्या बहुत कम है, जो सत्य के अनुसंधान के लिए सब तरह के दुख सहने को तैयार हैं, वेगतानुगतिक सभी प्रकार की जड़ता और आलस्य त्याग करने के लिए कृत संकल्प हैं। द्विवेदी जी ने इन्हीं संख्या विरल पाठकों के लिए अपनी पुस्तक लिखी है, इसीलिए वे राधा कृष्ण मतवाद के क्रम विकास की आलोचना इस तरह प्रगाढ़ भाव से कर सकेंगे। उन्होंने नूतन और पुरातन सब प्रकार के मतामत को चुनौती दी है, साहस के साथ विचार किया है और नाना युक्तियों के साथ अपना सिद्धांत उपस्थित किया है। प्रत्य विचार के क्षेत्र में प्रधानतः दो तरह की विपत्तियां हैं, एक है अति प्राचीन करने की प्रवृत्ति और दूसरी है अत्यंत नवीन करने की जिद। ये दोनों ही कोटिवाद सत्य अनुसंधान के परम शत्रु हैं। प्राचीन काल में किसी भी मतवाद को प्रतिष्ठित करने के लिए किसी न किसी वैदिक या पौराणिक नाम के साथ उसे युक्त करने की चेष्टा की गई है। ये मतवाद मानो झोले हैं जिन्हें टांगने के लिए ये वैदिक या पौराणिक नाम खूंटियों के समान है। कभी कभी झोले को सुरक्षित रखने के लिए एकाधिक नामों की खूंटियां तलाश कर ली गई हैं। इसका फल यह हुआ है कि परवर्ती काल में भिन्न भिन्न जातियों की खूंटियों झोलों के गड़बड़ झाले से एक ही जाति किसी प्रतीत होने लगी है। फिर भी ऐसा हुआ है कि एक ही खूंटी पर दो तीन तरह के झोले लटका रखे गए हैं। फिर भी उसी खूंटी की दुहाई देकर भिन्न जातियों के झोलों को एक में ही चला दिया गया है। इसके बाद जब झोलों की पुरानी कहानी का विचार किया जाने लगता है तो उस झोले को की जगह हम एक उस खूंटी के साथ काल विचार शुरू करते हैं जिसमें वह लटकाया गया है। हम प्रायः भूल जाते हैं कि इन झोलों को अति प्राचीन सिद्ध करने के लिए ही इन खूंटियों की खोज हुई थी। ऐसे विचार का गोलमाल अधिकतर हम ही लोगों में होता है। जो लोग बाहर से विचार करने आते हैं उनकी समस्या दूसरी ही होती है। ये लोग अगर निरपेक्ष होते तो कोई समस्या होती ही नहीं, पर असल बात है कि वे साम्राज्यवाद के चालक हैं और हम चालक। यह बात उनके लिए भूलना बड़ा कठिन है, इसलिए ज्ञानतः और अज्ञानतः इस देश की महिमा को खर्च करने की और उनकी प्रवृत्ति होना स्वाभाविक ही है। इस देश के धार्मिक आंदोलन को अगर अर्वाचीन सिद्ध किया जा सके तो सहज ही उसे ईसाई धर्म के निकट ऋणी सिद्ध किया जा सकता है, और ईसाई धर्म का जो कुछ गौरव है उसमें ये बाहरी विचारक समझते हैं कि उनका संपूर्ण दावा है, किंतु वे भूल जाते हैं कि ईसाई धर्म के अनुवर्तियों के दल में कितने दिनों से उन्हें शरण मिली है। किसी ऐश्वर्यवान के घर अगर किसी ने दयावश आश्रय पा लिया तो इसका यह अर्थ थोड़े ही है कि वह सारे ऐश्वर्य का दावेदार हो गया। अगर ईसाई धर्म में कुछ महिमा है तो उस महिमा का दावा हम लोगों का है, क्योंकि ईसाई धर्म पूर्व का धर्म है, हमारे ही घर की चीज है। ईसाई धर्म को परवर्ती सिद्ध करने से ही यदि सारे भारतीय धर्म मत को ईसाई धर्म का ऋणी सिद्ध किया जा सके तो इस एक ही कारण से सारा ईसाई धर्म ही बौद्ध धर्म का ऋणी है। यह ऋण तो अनेकांश में सचमुच सही है। यह बात निरपेक्ष पंडितगण धीरे धीरे स्वीकार करने भी लगे हैं। भारतवर्ष का यह परम अपराध रहा है कि वह परमत सहिष्णु और आश्रित वत्सल रहा है। दुर्दिन में दुर्अवस्था की मार से जब एक दल के ईसाई भारत के दक्षिणी हिस्से में आश्रितों के सहधर्मी इस मालूमी से सूत्र से भारतवर्ष के सारे गौरव का दावा पेश करने लगेंगे, यह दावा प्रतिष्ठित करने के लिए युक्त अयुक्त सभी उपायों से भारत के सारे भाव ऐश्वर्य को ठेल ठार कर उसे आश्रय दान के परवर्ती काल का बना दिया जाएगा। इसीलिए हम देखते हैं कि भारत धर्म मत के इति वृत्त की आलोचना की एक विपद है, एक सब कुछ को अति प्राचीन सिद्ध करने की प्रवृत्ति और दूसरी सब कुछ को अति अर्वाचीन सिद्ध करने की जिद। दोनों तरफ के इन दो पाषाण संकटों के भीतर तरंग संकुल खर स्त्रोत धारा में से भी द्विवेदी जी जो नैया खेकर घाट पर भिड़ा सके हैं, यह उनके लिए कम प्रशंसा की बात नहीं है। किसी एक धर्म का मूल कहाँ है, इस बात के अनुसंधान में सबसे बड़ी विपद क्या है, यही कहकर मैं पाठकों से विदा ग्रहण करूंगा। किसी धर्म या मतवाद का आरंभ निर्णय करना बड़ा कठिन है। गंगा का आरंभ कहाँ है, यह बात क्या आज भी निर्णित हुई है? गंगोत्री को ही गंगा का आदि स्थान क्यों माना जाए? उसके भी कितने ऊपर छिड़ से छिड़कर स्रोत और धाराएं पकड़ते पकड़ते किस एक आदि बिंदु पर उसका मूल मिलेगा, कौन बता सकता है? धर्म का वह मूल बिंदु बताना और भी कठिन है। हमारे अपने भीतर के ही बहुत से भाव हमारे अज्ञात चेतन लोक में कितने दिनों से धीरे धीरे उपचित होते होते किसी एक विशेष दिन को प्रत्यक्ष गोचर होते हैं, इस बात को क्या हमने कभी सोच कर देखा है? जिस दिन उसे स्फुट देखते हैं उसी दिन को उसका जन्मदिन मान लेते हैं, किंतु उसके पीछे जो सुदीर्घ इतिहास है वह हमारे अपने भीतर की चीज होने पर भी अपने ही निकट अगोचर है। लेकिन धर्म मत तो एक समूचे देश की ऐसी असंख्य चिन्मय धाराओं का प्रकाश है, फिर उसके आदि की बात निर्णय करके कौन बता सकता है? मिट्टी के नीचे असंख्य अज्ञात धाराएं अनेक दिशाओं में बहती रहती हैं, परंतु त्रिसात मनुष्य प्रयोजनवश उसमें से किसी एक का कुएं की खुदाई के द्वारा आविष्कार करता है, लेकिन वही तो उसका आदि नहीं है, वहाँ तो केवल उसका परिचय पाया गया है। यह बात भी बहुत कुछ इसी तरह की है। इसी प्रकार मध्य युग के व्यक्त लिंगाचार तथा अव्यक्त लिंगाचार बहुविध भक्ति धाराएं भारतवर्ष में भीतर ही भीतर दीर्घ काल से बहती आ रही थी, बीच बीच में उनका परिचय बिल्कुल नहीं मिलता तो बात नहीं है, फिर भी हमारी सिरा उपसिराओं के रक्त प्रवाह की तरह वे हमारे अलक्ष्य में ही बहती रही। जो हमारे लिए जीवन का भी जीवन हुआ करता है वही अत्यंत अगोचर होता है। इसी समय हठात बाहर से मुसलमान धर्म का आगमन हुआ। इसका अर्थ यह था कि भारत के धर्म और आदर्श के सामने एक नई चुनौती उपस्थित हुई। इसीलिए रघुनंदन आदि निबंधकारों के स्मृति शास्त्र से जो सर्वोत्तम था उसे सबके सामने उपस्थित किया। पूर्णानंद सर्वानंद कृष्णानंद और तांत्रिक साधकों का दल नए सिरे से अपनी साधना का महत्व प्रमाणित करने लगा और भक्ति तथा भाव के साधकों का दल सगुण निर्गुण नाना भाव से अपनी अपनी श्रेष्ठ संपत्ति को सबके सामने उपस्थित करने लगा। अर्थात इतने दिनों तक जो धाराएं अंतर सलीला थी प्रयोजनवश कुआं खोद कर उन्हें सबके सामने उपस्थित करना पड़ा। एक धर्म मत का इतिहास ढूंढने के लिए यदि हम ग्रंथ शिलालेख आदि के लिए कोई स्पष्ट डॉक्यूमेंट दलील देखकर ही उसका आदि निर्णय करने लगे तो यह बड़ी भारी भूल होगी। मनुष्य अपने जन्मदिन को पैदा होता है, फिर क्रमशः बड़ा होता है, इसके बाद अगर किसी दिन कोई वैसायिक प्रयोजन उपस्थित हुआ तो शायद किसी दिन वही दलील पर दस्तखत भी कर देता है। ऐसे भी कितने ही हैं जिन्होंने इस जीवन में कभी कहीं दस्तखत किए ही नहीं। इसीलिए यह तो नहीं कहा जा सकता कि इन आदमियों का जन्म हुआ ही नहीं या इन्होंने जीवन यात्रा का निर्वहन किया ही नहीं। इस देश में ऐसे अनेकानेक मतवाद और साधनाएं हो चुकी हैं और आज भी जिन्होंने कभी किसी दलील पर दस्तखत नहीं किए किंतु आध्यात्मिक गगन बिहारी इन ज्योतिषक पिंडों का परिचय वेदशाला के पंडितों को नहीं मिला, इसीलिए इनका अस्तित्व अस्वीकार नहीं किया जा सकता। भारत के साधक नहीं जानते कि अपनी सत्ता और महिमा प्रमाणित करने के लिए समाचार पत्र विज्ञापन और प्रोपेगंडा प्रवृत्ति का ढोल पीट कर खाली अमेरिकन पद्धति से सारे संसार में बूमिंग करना होता है। इसीलिए भारतवर्ष के साधकों की प्राणपण चेष्टा अपने आप को छिपा रखने की थी, अपने को प्रचारित करने की चेष्टा से संसार भर के लोगों को चकित कर देने की कोशिश उन्होंने कभी की ही नहीं। वृक्ष का जीवन धारी मूल मिट्टी के नीचे रहता है, जीवन का धर्म भी लोक लोचन के अंतरात्मा में रहता है। जिसे जीवन की झंझट नहीं रहती उसी को भूमि करने में हिचक नहीं होती। भारत के साधक गणों ने अपनी हमारी अंतरचारिणी धर्म साधना को सबके सामने जाहिर करने की पाप चेष्टा की, पतिव्रता कुल वधु को वैश्य बनाने के साथ तुलना की। अपने मतामत को ये साधक कहीं भी विपुल करके दिखलाना नहीं चाहते थे, वरन वे बीज और अंकुर की तरह जीवांत धर्म को स्वल्पायतन देखकर ही उसके प्रति विश्वास रखते थे। इसलिए उन्होंने कहा है, स्वल्पम पयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। स्थूल विचार से और जड़ दृष्टि से देखने पर ये सब धर्म मत पैदा ही नहीं हुए, क्योंकि अदालत ग्राह्य किसी दलील को सर्व साधारण के सामने दाखिल करने में उन्हें संकोच हुआ था। धर्म का विचार उसके अपने महत्व से, उसके अनुवर्तियों के त्याग और साधना से और उसकी अंतरतम आध्यात्मिक प्राण शक्ति से होता है। जिन्होंने भारत की साधना और धर्म मत की आलोचना की है उनके मन ने बारंबार भारतीय धर्म मत और साधना का यह रहस्य अनुभव किया है। आजकल चारों ओर का वातावरण बहिर्मुखी है, जहाँ की भाषा भूमि की भाषा है, पर ये साधनाएं हैं शांत और अंतर्मुखी। मौत ही इनका जीवन लक्षण है, इसीलिए आज दिन उसके साथ आधुनिक वातावरण का पद पद पर विरोध होता है, पद पद पर आघात होता है। आशा करता हूँ कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ग्रंथ को पढ़ते पढ़ते पाठक वर्ग के अंतर में बार बार यह वेदना जाग उठेगी। शांति निकेतन, क्षिति मोहन सेन।